हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मंथन के घर हुए तमाशे के बाद आयु ने घर छोड़ दिया था। आरव और मंथन दोनों ही नहीं जानते थे कि आयु कहाँ गई है, पर अनुष्का से बात करने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स थे। आयु जहाँ भी होगी वो ठीक थी, बस यही सोचकर दोनों शांत थे। मंथन अपना काम कंटिन्यू करते हुए ऑफिस जा रहा था, तो वहीं आरव ने पिछले 3 दिनों से डिज़ायर्स में कदम तक नहीं रखा था। आरव सारा काम घर से ही संभाल रहा था और आयु का ख्याल अपने दिमाग से निकालने के लिए उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबा लिया था। आरव के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था और आरव ऑफिस नहीं आ रहा था, तो युवानी ने गौरवी जी को इस बारे में इन्फॉर्म किया। गौरवी जी इस वक्त आरव के सामने उसके घर में बने ऑफिस में बैठी हुई थीं, तो वहीं आरव उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय काम में ऐसे खोया हुआ था मानो वो उनकी बातें सुनकर भी न सुन रहा हो। आयु की गायब होने के बारे में गौरवी जी को अभी तक कोई खबर नहीं थी। आरव, मैं पिछले 1 घंटे से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। तुम कुछ बोलोगे या मैं यहाँ से जाऊँ? गौरवी जी ने चिढ़ते हुए कहा। आरव ने गहरी सांस ली और गौरवी जी की तरफ देखा। उसने मायूस आवाज में कहा, दादी, जब आप यहाँ पर आई थीं तब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरा बात करने का मूड नहीं है, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए। गौरवी जी ने सख्त आवाज़ में कहा, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी आरव, पिछले 2 दिनों से तुम ऑफिस नहीं जा रहे और इस वजह से काम पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया है इस बात का? दादी, डिज़ायर्स को मैंने बनाया था, तो किसी भी हाल में मैं अपना बिजनेस डूबने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं कितना भी परेशान क्यों ना हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि डिज़ायर्स को कैसे हैंडल करना है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकती हैं मैं उसी में लगा हुआ हूँ, आरव बोला। अपनी बात खत्म करके आरव ने फिर से फाइल की तरफ ध्यान दिया। वो उसमें कुछ पढ़ पाता उससे पहले गौरवी जी ने उसे उठाकर बंद कर दिया था। उनके इस हरकत पर आरव ने उनकी तरफ घूर कर देखा। जब तक बात नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम इस वजह से परेशान हो क्योंकि आयु तुम्हें छोड़कर मंथन के पास चली गई। तुम मुझसे भी गुस्सा हो क्योंकि मैंने ही आयु के सामने वो शर्त रखी थी। पर आरव, एक ना एक दिन ये होना ही था। तुम्हें आयु से कोई अटैचमेंट नहीं था, मुझे लगा तुम इन सब के लिए तैयार हो, गौरवी जी ने गंभीर आवाज में कहा। उन्हें अभी यही लग रहा था कि आरव इस वजह से परेशान है क्योंकि आयु ने आरव के बजाय मंथन को चुना था। गौरवी जी की बात सुनकर आरव के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने भौहें उठाकर कहा, दादी, अगर आयु मंथन के पास होती तो मैं 1% भी परेशान नहीं होता, लेकिन आपको नहीं पता जब उस दिन मंथन आयु को लेकर अपने घर गया तो उसकी फैमिली वहां पर मौजूद थी। आपसे तो उनके ड्रामा छुपे नहीं होंगे। इस बार बेचारी आयु भी उनकी झूठी जिद का शिकार हो गई और मंथन ने उसे छोड़ दिया। मंथन के घर पर जो भी हुआ था उसके बारे में आरव ने गौरवी जी को बता दिया था, तो वहीं पूरी बात सुनने के बाद गौरवी जी हैरान थीं। उन सबके मन में मंथन की एक डिसेंट सी इमेज बनी हुई थी। उन्हें यही लगता था कि मंथन और आयु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह आयु आरव से शादी होने के बाद भी मंथन के साथ रहना चाहती है, वैसा ही कुछ मंथन के दिल में होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मंथन अपनी फैमिली की बातों में आकर आयु को छोड़ देगा। गौरवी जी के चेहरे पर अफसोस भरे भाव उभर आए थे। उन्होंने मायूसी से कहा, तब तो बेचारी आयु बहुत बुरे हाल में होगी, और सुबह मैंने भी उससे काफी सख्ती से बात की थी। इतना सब कुछ हो गया और तुम अब मुझे बता रहे हो? आयु को इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता दादी वो कहाँ पर है, और तभी मैं इतना परेशान हूँ। जितना कोशिश करता हूँ इस बारे में न सोचूं, उतना ही बार बार याद आता है कि किस तरह वो रोते हुए मंथन के घर से निकली थी, आरव ने स्ट्रेस टोन में जवाब दिया। क्या तुमने उसकी फैमिली से बात की? जरूर वो लुधियाना गई होगी। ठीक है, जो भी हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसे तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहिए था। तुम्हारा रिश्ता जैसा भी हो लेकिन तुम उसके पति हो, गौरवी जी बोली। आरव ने जवाब में कहा, दादी, वो अपनी फैमिली के पास भी नहीं गई है, मैंने उसे बहुत ढूंढा था लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। रही बात मेरे पास आने की, तो मेरे पास आती भी तो किस मुंह से दादी? याद है आपने भी उस सुबह उससे मंथन और मुझ में से एक को चुनने को कहा था? उसे तो जवाब देने का मौका भी नहीं मिला कि उससे पहले ही मंथन का कॉल आ गया और वो उसे यहाँ से ले गया। उसके बाद अगर आयु मेरे पास आती तो उसके हिसाब से ये मेरे साथ में गलत होता। आप नहीं जानती हैं आयु के उसूल। आरव ने आयु का पक्ष गौरवी जी के सामने रख दिया था, तो वहीं गौरवी जी को खुशी हो रही थी कि आरव आयु को समझने लगा है। आरव जैसा शख्स जो किसी के बारे में नहीं सोचता था, उसे ये तक पता था कि आयु के दिल में क्या होगा। गौरवी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आयु तुम्हारी पत्नी है आरव, और इस घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे। अगर वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहती तो मेरे यहाँ आकर रह सकती है। मैं उससे नाराज नहीं हूँ। उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है और उसने मंथन को चुना, ये अच्छी बात है। कम से कम उसने तुम्हें किसी झूठी होप में नहीं रखा। उसने मुझे कोई झूठी होप नहीं दी है, बस वो मुझे ही बहुत अच्छी लगने लगी। अचानक आरफ के मुंह से निकला तो गौरवी जी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। क्या मैं इसे तुम्हारा कन्फेशन समझूं कि तुम्हें आयु से प्यार हो गया है? गौरवी जी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आरव ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुराकर हां में सिर हिला दिया था। उसके सीधे सीधे इजहार करने पर गौरवी जी भी काफी खुश हो गई थी। फिर तो लगता है कि तुम्हारी एक्स का दिल टूटने वाला है। वो तुमसे शादी करने के ख्वाब काफी टाइम से देख रही है। अफसोस कि तुम दोनों का रिलेशन चल नहीं पाया, गौरवी जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूँ। हमारे बीच किसी तरह की रिलेशनशिप नहीं थी, वो बस एक तरह की डील थी, आरव ने बताया। लगता है तुम आज के दिन मुझे एक के बाद एक झटके देने वाले हो। पहले अचानक माहिरा को अपने साथ ले आए और कारण नहीं बताया, और अब बोल रहे हो कि डील थी। जब मैंने तुम्हें पहले पूछा था तब तुमने यही कहा था कि तुम उसके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, गौरवी जी ने उसे घूरते हुए पूछा। आरव ने आज तक अपने और माहिरा के इस अजीब रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया था। यहां तक कि अनुष्का तक को नहीं पता था कि अचानक माहिरा अपनी शादी तोड़कर आरव के साथ क्यों चली गई थी, जबकि वो जिस लड़के से शादी कर रही थी वो उससे प्यार करती थी। अचानक आरव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने गौरवी जी की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, श्रुति याद है आपको? श्रुति का नाम सुनकर गौरवी जी की आंखें नम होने लगी थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आखिर मैं उस मासूम बच्ची को भूल भी कैसे सकती हूँ? आज भी अपनी बेटी के मरने का गम तुम्हारी बुआ भूल नहीं पाई है। सोचा था शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी, लेकिन उस दरिंदे ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया।
उसी दरिंदे के साथ माहिरा शादी करने जा रही थी। मैं नहीं चाहता जो श्रुति के साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो। मैंने माहिरा को उससे शादी तोड़ने और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। जब मुझे पता चला कि वो फिर से शादी कर रहा है तो मैं वहां पहुंच गया था। बस बदले में मुझे माहिरा को हमेशा के लिए अपने साथ रखना था। माहिरा की फैमिली उसके इस कदम से काफी नाराज हो गई थी। बस यही वजह है कि मैं माहिरा को कभी खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ दादी। आयु के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे माहिरा को समझाना होगा और उसकी लाइफ सेटल करनी होगी। आरव ने गौरवी जी को सब कुछ बता दिया था। तुमने उसे इस शादी से बचाकर पहले ही उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, वरना आज वो जिंदा भी नहीं मिलती। तुमने किसी से वादा किया है तो हम माहिरा के लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, गौरवी जी ने आरव का हाथ सहला कर कहा। उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कुराहट थी। अब तक माहिरा और आरव के रिश्ते को लेकर काफी सारी बातें फैली हुई थीं। कई बार तो गौरवी जी को भी आरव पर गुस्सा आता था कि वो बिना किसी रिश्ते के माहिरा को अपने साथ क्यों रख रहा है, या फिर अगर वो उसे प्यार नहीं करता तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। पर आज असली कारण जानने के बाद उन्हें आरव पर प्राउड फील हो रहा था। आज आरव और गौरवी जी के बीच काफी सारी बातें हुई थीं, जिसमें पहले आरव ने आयु से प्यार होने की बात को एक्सेप्ट किया तो बाद में माहिरा और अपने रिश्ते का सच बता दिया था। ठीक है आरव, अब मैं चलती हूँ। जानती हूँ बेटा तू परेशान है, पर एक बार जाकर कॉन्ट्रैक्ट देख लेना। तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं नहीं चाहती कि वो और डिले हो। रही बात आयु की, तो कभी न कभी वो अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करेगी। मैं तारा से बात कर लेती हूँ ताकि आयु के बारे में पता चल जाए, गौरवी जी ने आरव को समझाते हुए कहा। अब उन्हें आरव से कोई शिकायत नहीं थी तो वो वहां से जाने लगी। आरव उन्हें बाय बोलकर अंदर की तरफ आया ही था कि तभी जल्दबाजी में युवानी वहां पहुंची। आरव को अपने सामने ठीक ठाक देखकर युवानी ने राहत की सांस ली। उसने कहा, थैंक गॉड सर, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप पिछले 3 दिनों से गायब थे तो हमें लगा कि आप बीमार तो नहीं हो गए हैं। आप तभी इस तरह गायब होते हैं जब कभी हेल्थ प्रॉब्लम हो, आरव ने आईज रोल की और कहा। युवानी, थोड़ा सांस तो ले लो, कितना जल्दी जल्दी बोले जा रही हो। पता है ना मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर पर आए, फिर भी तुम यहाँ आ गई, युवानी ने आरव की तरफ घूर कर देखा और धीरे से कहा। एक तो बंदा खैर खबर पूछने आया है और इन्हें अपनी पसंद नापसंद की पड़ी है, युवानी ने सिर हिलाया और फाइल उसकी तरफ करते हुए कहा। सॉरी सर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी देनी थी। वैसे आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे अब तक आयु मिली नहीं है। मैंने तुम्हें कॉल किया तो था, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई, आरव बोला। क्या वो अब तक घर नहीं आई है? लेकिन मुझे लगा कि आप दोनों साथ रह रहे होंगे। अच्छा, तभी वो आपसे अलग अकेले ऑटो में ऑर्फिनेज की तरफ जा रही थी, युवानी अपनी हड़बड़ाहट में बोले जा रही थी। क्या कहा तुमने? तुमने आयु को देखा? मुझे बताओ वो कहाँ है, आरव जल्दी से बोला। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही वो मुझे मिली थी, वो ऑटो में थी। मुझे काफी देर तक टैक्सी नहीं मिली तो चलकर जाना पड़ा। मैंने उन्हें हमारी ऑफिस से थोड़े दूर वाले अनाथ आश्रम में जाते हुए देखा था, युवानी ने काफी हल्के तरीके से बताया। उसे पता भी नहीं था कि मामला कितना सीरियस है। आयु के बारे में इतने दिनों बाद पता चलने पर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आरव जल्दी से दौड़कर अंदर गया और गाड़ी की चाबियों के साथ बाहर आ गया था। घर से निकलने से पहले आरव ने युवानी से कहा, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, घर का पासवर्ड मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम यहीं रहोगी और मेरे घर का ध्यान रखोगी। अगर कुछ चोरी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं उसे लेकर बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। युवानी उसे मना करना चाहती थी, लेकिन आरव जल्दबाजी में गाड़ी के अंदर बैठ गया था। वो मुंह बनाते हुए आरव को देख रही थी। युवानी ने गहरी सांस लेकर कहा, थोड़ी देर पहले तक तो इन्हें किसी का अपने घर में आना पसंद नहीं था, और अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपकर चले गए। युवानी को मजबूरन वहीं पर रहना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ आरव फास्ट ड्राइव करके युवानी के बताए हुए ऑफिनेज में पहुंच गया था। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी भी हाल में आयु को खुद से दूर नहीं जाने देगा, चाहे वो खुद भी उससे दूर जाने की जिद क्यों ना करे। आरव जब अंदर गया तो उसने आयु को कुछ बच्चों के साथ देखा। आयु को सही सलामत देखकर आरव के चेहरे पर राहत के भाव थे, तो वहीं उसे गुस्सा भी आ रहा था। आरव ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही जगह चुनी है तुमने अपने लिए मिसेस खुराना। मेरे होते हुए तुम ऑफिनेज में कैसे रह सकती हो? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। सीधे सीधे चलने का कहूंगा तो कभी हाँ नहीं बोलने वाली। लगता है अब अपना आरव खुराना वाला दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आरव के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो आयु को अच्छे से जानता था। अगर वो पहले उसके पास हेल्प लेने के लिए नहीं आई तो बाद में भी नहीं आने वाली थी। आरव आयु के पास जाने के बजाय अनाथ आश्रम के ऑफिस में गया। उसने ऑफिस में बात करके वहाँ के सभी ट्रस्टीज को बुलवाया और वहाँ उन सबसे लगभग एक घंटे तक मीटिंग की। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर आया। आरव ने ऑफिस से बाहर निकलते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहा, बी रेडी मिसेस खुराना, अब जो ड्रामा होने वाला है वो देखना तो बनता है। देखते हैं आज तुम्हारे गुस्से का लेवल कितना हाई जाता है। अब तो बस शो शुरू होने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट।